हरे कृष्ण। तो आज और अगले कुछ दिनों में दक्ष और शिवजी और दक्षिणायन सती उनकी जो कहानी है उस पर हम चर्चा करेंगे, और खास करके इस विषय पर हम चर्चा करें कैसे मतभेद होते हैं, कैसे उससे कॉन्फ्लिक्ट जैसे संघर्ष होता है और कैसे वो बहुत बढ़ जाता है। तो मैं कई उपमाओं का इस्तेमाल करूँगा। एक उपमा जो इस्तेमाल करूँगा कि है वो है दावाग्नि। दावाग्नि होती है जो संसार दावान लिध लोक हम गाते हैं मंगल आरती में, तो वह एक बड़ी अग्नि हो सकती है जो सारे बड़े बड़े जंगल को जला सकती है। द कॉर्नर कीप इट हॉरिजॉन्टल, तो वह ऐसे जला सकती है। वह सारी शुरू होती है एक चिंगारी के साथ। तो वैसे ही बड़े बड़े कभी कभी लोगों में झगड़े हो सकते हैं, वो पीढ़ियों तक चल सकते हैं। कभी कभी झगड़े जो होते हैं अगर राज परिवार में होते हैं या कोई शाही परिवार में होते हैं तो वो युद्ध में परिवर्तित हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, एक व्यक्ति की सैकड़ों की मृत्यु हो जाती है। वो सब की शुरुआत होती है एक चिंगारी, और वो चिंगारी है वो अगर हम उस दावाग्नि मानते हैं उसको जो संग्राम हो रहा है जो संघर्ष हो रहा है, वह चिंगारी जो होती है इसे शुरू होती है वो चिंगारी है गलत फहमी। सो मिसकंसेप्शन इज द और मिसअंडरस्टैंडिंग इज द कॉज ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी कोई कहेगा कि वास्तव में पर कुछ कुछ लोग तो बुरे होते हैं, उसे झगड़ा करना जरूरी होता है। हाँ वो सही है, होता है कुछ कुछ लोग बुरे होते हैं, कौरव बुरे एक तरह से बुरे व्यक्ति थे, उनसे झगड़ा जरूरी था, उनसे युद्ध करना जरूरी था पांडव के लिए। पर उसमें भी जो अगर हम मूल देखेंगे तो वो गलत फहमी थी। गलत फहमी क्या थी? धृतराष्ट्र के मन में ये गलत फहमी थी कि ये जो राज्य है मेरा होना चाहिए था, और उसके मेरा नहीं हो पाया तो कम से कम मेरे पुत्र का होना चाहिए। और बचपन से उसने दुर्योधन को इसी तरह से बढ़ाया कि तुम ही अगले राजा बनने वाले हो, और फिर वो राजा बनने के लिए जो भी करने को तैयार, जो जरूरी था उसको लगा वो करने को तैयार हो गया। तो यहां पे हम इस विषय पे अगले तीन चार प्रवचनों में चर्चा करेंगे। तो भागवतम में कई बार जो वार्तालाप होते हैं, जो प्रसंग बताए गए हैं, वो प्रश्नों से शुरू होते हैं। अभी जब हम प्रवचन होते हैं, भागवतम भागवत कथा होती है, अलग अलग पद्धति से हो सकती है वो। कभी कभी ऐसे क्लास होते हैं कि वक्ता जो होते हैं वो आके प्रवचन देते हैं, उसके बाद में श्रोता सवाल पूछते हैं, और कभी कभी ऐसे होते हैं कि वक्ता पांच दस कुछ कुछ ऐसे प्रवचन वक्ता होते हैं वो पांच दस मिनट दस मिनट पंद्रह मिनट का प्रवचन देते हैं, उसके बाद में आप सवाल पूछो, अगर सवाल नहीं है तो दस मिनट में खत्म हो जाएगा सब कुछ, सवाल है तो फिर दो तीन घंटे तक भी चल सकता है। तो कुछ तो अभी दो प्रकार के हो गए, एक तरह से क्या है वक्ता जो है खुद बोल रहा है, दूसरा है कि जो श्रोता सवाल पूछ रहा है। भागवतम जो है एक तीसरे प्रकार का संदेश है। तीसरा क्या है उसमें, अगर जो सवाल पूछ रहा है कोई, तो फिर साधारणतः प्रवचन के बाद अगर सवाल होते हैं तो अलग अलग व्यक्ति सवाल पूछते हैं, और इसलिए हर एक सवाल अलग अलग दिशा में जा सकता है। पर भागवतम में ऐसे है कि साधारणतः एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, तो जो अनेक श्रोतागण हैं पर उनमें से एक श्रोतागण जो है, एक श्रोता है वो उनमें से हम श्रोतागणां श्रेष्ठ बोल सकते हैं। जैसे यहां पे बताया है कि जो विनम्र है, जो शीलवताम है, उनमें से श्रेष्ठ है। तो सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषिगण हैं, वहां पे जो संदेश हुआ उन श्रोताओं में से किसको प्रतिनिधि माना गया था? शौनक ऋषि को। तो सारे सवाल पूछते हैं तो वो शौनक ऋषि पूछते हैं। तो कभी कभी शौनक भागवत में कभी कभी शौनक उवाच बोला गया है, कभी कभी ऋषि उवाच बताया गया। तो उसका भाव क्या है? ऋषय उवाच है, एक व्यक्ति पूछता है। और भाव ऐसा है कि वो ऋषियों के प्रतिनिधित्व करते हुए शौनक ऋषि सवाल पूछते हैं। और वैसे ही जो शुकताल पे वार्तालाप हुआ उसमें अनेक ऋषिगण भी थे, अनेक श्रोतागण थे, पर वो जो कथा प्रधान रूप से किसको बताई गई थी? परीक्षित महाराज को। कभी कोई ऐसे श्रोता होते हैं, कोई ऐसे भक्त होते हैं, उनको बहुत से सवाल होते हैं, तो फिर वो सवाल पूछने आ जाते हैं तो ये सवाल अच्छे इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, इतने रोचक होते हैं कि और लोग भी आके सुनने के लिए क्या सवाल का जवाब होगा, तो वैसा है। तो और अभी भागवतम में ऐसे है कि वो नेस्टेड कॉन्वर्सेशंस बोलते हैं, कंप्यूटर में नेस्टेड लूप्स होते हैं, मतलब एक शुरू हुआ बीच में दूसरा खत्म है, उसके बीच में कुछ और शुरू हो रहा है। तो यह जो है क्या है कि बाहर का जो संवाद है वो है सुत गोस्वामी और स्वामी ऋषियों के बीच में, दूसरा उसके बीच में एक संवाद है वो है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में, उसके बीच में एक संवाद हो रहा है अभी वो है किसमें, विद्युर और मैत्रेय में, और उसमें विदुर सवाल पूछ रहे हैं। तो ऐसे ये तीन स्तर पे हो गया भागवतम में, एक जगह पे आता है छह स्तर तक ऐसे संवाद जाता है, तो सातवें स्कंद में आता है। तो कई बार ऐसे होता है अगर भागवतम पढ़ते हैं तो कौन किससे बोल रहा है समझ में नहीं आता है, पूरा को पूरा चित्र अच्छा ये चल रहा है यहाँ पे। पर ये दिलचस्प की बात यह है कि भागवतम ये दिखाता है कि अलग अलग समय पे अलग अलग संवादों में अलग अलग युगों में भी लोगों ने जो बातचीत की है उसका तत्वज्ञान जो है उसका सार है समान है। और इस तरह से बाय हैविंग मेनी कॉन्वर्सेशंस अक्रॉस हिस्ट्री द भागवतम इलस्ट्रेट्स हाउ इट्स मैसेज इज ट्रांस हिस्टोरिकल, कि इतिहास में अलग अलग जगह पे जो संवाद हुए हैं और उन सब का संदेश एक है। इस तरह से भागवतम दिखा रहा है कि ये संदेश है ये केवल ऐतिहासिक नहीं है, ये दिव्य है, इतिहास के परे है, आध्यात्मिक स्तर पे संदेश है और इतिहास में अलग अलग समय पे उस संदेश को बताया गया है। तो जब ये सवाल पूछते हैं कई बार भी सवाल जो पूछे जाते हैं दो प्रकार के सवाल हो सकते हैं, एक है तत्वज्ञान के बारे में सवाल हो सकता है ये ऐसे क्यों है ये ऐसे क्यों है, और दूसरा सवाल हो सकता है लीला के बारे में। जैसे तत्वज्ञान के बारे में सवाल होता है, जैसे परीक्षित महाराज पूछते हैं कि कई बार लोग पाप करने के बाद प्रायश्चित करते हैं, पर प्रायश्चित मथोपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत, बोलते कि प्रायश्चित करने के बाद पुनः वही कार्य में वापस लग जाते हैं, तो ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा है। तो यह एक तत्वज्ञान का सवाल है, इस तत्वज्ञान के सवाल के जवाब में कुछ तत्वज्ञान का वर्णन आता है और फिर एक लीला का वर्णन आता है। अब तो दूसरा है कि कोई सीधा लीला के बारे में सवाल है, अच्छा ये ऐसे क्यों हुआ ऐसे क्यों हुआ, और फिर लीला बताई जाती है, फिर लीला से भी कुछ निष्कर्ष बताया जाता है। तो अभी अभी जो हम प्रसंग देख रहे हैं उसकी शुरुआत किस प्रकार के सवाल से होती है, लीला के आधार पे। तो जब लीला के आधार पे शुरुआत होती है तो फिर वो कई बार सवाल ऐसे होते कि वो लीला के बारे में कुछ ऐसी चीज बताई जाती है जो बड़ी दिलचस्प होती है। जैसे अगर कोई टीवी पे एपिसोड चल रहा होता है तो एक एपिसोड एक भाग उसका खत्म होता है तो फिर कभी कभी उसका जैसे उसको कहते हैं इंग्लिश में क्लिफ हैंगर एंडिंग। क्लिफ हैंगर एंडिंग मतलब क्या कि वो जो हीरो और विलन में युद्ध चल रहा है झगड़ा चल रहा है और वो विलन हीरो को फेंक देता है एक पहाड़ी से और पहाड़ी से गिरते हुए भी हीरो एक पहाड़ के कोने को पकड़ लेता है और फिर तभी कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम तभी अगले बार होगा अभी तो क्या होगा अभी हीरो बचेगा नहीं कैसे बचेगा इसे परिस्थिति कैसे निकलेगा वो तो बड़ा उत्साह रहता है और फिर उत्साह के साथ वो सवाल पूछते हैं। तो कई बार जो भागवत में कथाकार है वो ऐसी कोई एक चीज बता देते हैं कि वो बड़ी अजीब होती है। जैसे सातवें स्कंद में बताते हैं कि सातवें स्कंद में बोला था अलग अलग स्तर पर वो संवाद हो रहा है तो वहां पर संवाद होता जा रहा है युधिष्ठिर महाराज और नारद मुनि के बारे में बीच में संवाद है। तो नारद मुनि कहते हैं वहां पे कि ये हिरण्यकशिपु नाम का राजा था और उसने अपने पुत्र का वध करने का प्रयास किया। तभी तुरंत युधिष्ठिर सवाल पूछते हैं कि साधारण तो क्या होता है पिता अपने पुत्र के बड़ी बड़ी सह करते हैं, कोई पिता अपने पुत्र का वध कैसे करेगा, तो कृपया यह बताओ मुझे। या उसके पहले वो सवाल पूछते हैं कि किस तरह कि जो कोई वैकुंठ से किसी का पतन कैसे हो सकता है वो बताओ मुझे। तो ये जो है भागवतम में ऐसे लीला कैसे होती है, लीला का संक्षिप्त में वर्णन दिया जाता है और उस लीला की सबसे दिलचस्प बात बताई जाती है और फिर उसके बारे में जो श्रोतागण है अधिक सवाल पूछते हैं। तो अभी पिछले अध्याय में इस चौथे स्कंद के क्या बताया गया है कि दक्ष और प्रजा दक्ष और सती की लीला के बारे में बताया गया, उसमें बताया गया था संक्षिप्त में कैसे शिवजी ने शिवजी के प्रति दक्ष ने उनका अपमान किया और उनके प्रति अपराध किया, उसे बड़ा संघर्ष हो गया और उसके अंत में यहां तक चला गया कि सती ने अपना शरीर त्याग दिया। तो अभी बहुत सुनते ही वह एक सवाल पूछते हैं। सवाल क्या पूछते हैं? वो यहाँ पे दो सवाल पूछ रहे हैं। भवे शीलवताम श्रेष्ठ है, कि जो भव जो शिवजी है वह तो बड़े विनम्र है, बहुत बड़े सुसंस्कृत है, वह तो बड़े किसी का द्वेष नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है शीलवताम श्रेष्ठ है, उनके प्रति विद्वेष अकरोत कस्मात, उनके प्रति कोई द्वेष कैसे कर सकता है? और उनके प्रति दक्ष ने द्वेष क्यों किया? और दूसरा बताया गया है खासकर दक्ष दुहित्र वत्सल, जो दक्ष है वो अपने पुत्री कन्या के प्रति स्नेह करते थे, स्नेहपूर्ण थे, फिर उनके अनादृत्यात्म जान सकते हैं, तो उनने उनका अनादृत्याम अनादर क्यों किया? और यह जो बड़ा विस्मय की बात है, आत्मजाम उनकी खुद के कन्या थी वो, तो उनके उसका ऐसे अनादर क्यों किया, उसका दुर्लक्ष्य क्यों किया? यहां पे ये जोर देने के लिए कि वो उनकी कन्या थी, दो बार आता है, वो दुहित्र वत्सल थे और वो उनकी आत्मजा थी। तो आत्मा इस शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं अलग अलग संदर्भ में। तो आत्मा का अर्थ कभी शरीर भी हो सकता है, आत्मज मतलब जो खुद से उत्पन्न हुआ है, खुद के शरीर से उत्पन्न हुआ है वो आत्मज। आत्मा का अर्थ कभी मन भी होता है, पंदुरात्मात्मनस्तस्य ये इनात्म आत्मना चित्ता, कि उसको यहाँ पे हमें हमारा मन कभी हमारा मंत्र हो सकता है, कभी शत्रु हो सकता है। आत्मा का अर्थ कभी भगवान हो सकता है, कभी आत्मा हो सकता है, कभी भगवान भी हो सकता है। ईशावास इदम सर्वम, ऐसा एक श्लोक उपनिषद में आता है। तो वैसे ही आठवें स्कंद में एक श्लोक आता है, आत्मावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा वृधा तस्य स्वेत्तनम। तो शब्द जो होते हैं उनके अर्थ केवल एक डिक्शनरी में नहीं होते, एक शब्दकोश में नहीं होते, शब्द के अर्थ जो होते संदर्भ में भी होते। तो जो यहां पे आत्मा आत्मजा, अभी अगर आत्मा को हम आध्यात्मिक देखते हैं तो न केवल आत्मा का जन्म होता है, न केवल आत्मा का अंत होता है, न तो आत्मा का जन्म होता है, न से आत्मा का किसके जन्म होता है, क्योंकि सब आत्मा शाश्वत है। तो आत्मज इस शब्द को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो ये आत्मा कभी जीवात्मा के लिए नहीं लग सकता है। तो आत्मज का अर्थ है वो शरीर के, तो कभी कभी आत्मा को शरीर के रूप, शरीर को भी आत्मा मान लेते हैं। क्यों ऐसे है? आत्मा का अर्थ इंग्लिश में सोल हो सकता है, इंग्लिश में सेल्फ भी हो सकता है। अभी सोल और सेल्फ, इसमें फर्क क्या है कि हर एक व्यक्ति खुद को आत्मा नहीं समझता है। तो जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में है वो खुद को अपना शरीर समझता है। तो कभी कभी व्यक्ति की, व्यक्ति का मैं कौन हूं ये धारणा और सत्य अलग अलग हो सकता है। तो फिर तभी इस तरह से आत्मा का उसका अलग होता है। ये दो सवाल है प्रधान रूप से। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में विस्तार करते हैं शीलवताम श्रेष्ठ इसका, कि शिवजी तो बड़े विरक्त थे, बड़े विनम्र थे, बड़े किसी के झंझट में ज्यादा नहीं पड़ते थे। तो फिर ऐसे व्यक्ति से कोई क्यों दुश्मनी करेगा? साधारण यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है विद्वेष, कि साधारणतया कोई व्यक्ति किसी के प्रति ईर्ष्या क्यों करता है? क्योंकि उस व्यक्ति के पास कुछ ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो कोई अमीर व्यक्ति होगा तो उसके प्रति कोई ईर्ष्या क्यों करे? ईर्ष्या करने के लिए क्या है उसमें, जब उस दूसरे के किसी के पास ऐसी कोई चीज होती है जो हमारे पास नहीं है। अगर मान लीजिए कोई बहुत गरीब व्यक्ति है और वो किसी तरह से बहुत फेमस हो गया, बहुत उसका टीवी पे इंटरव्यू आ गया, उसका सोशल मीडिया पे उसके बारे में बहुत कुछ पता गया, तो कोई अमीर व्यक्ति बोले अरे ये तो इतना गरीब है, इसका इतना क्यों, इससे इतना क्यों गुमगान हो रहा है, मेरा तो नहीं, मेरा, मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास, मेरा नहीं हो रहा है ऐसे। तो तभी क्या हो गया, उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है पर उसके वक्त के पास यश आ गया है कि कोई भी कारण क्यों ना हो, तो फिर वो यश के कारण कभी कभी ईर्ष्या हो सकती है। तो ईर्ष्या साधारणतया दूसरे व्यक्ति के पास कुछ ऐसा चीज है जो उस व्यक्ति के पास नहीं है उसके कारण होती है, पर सिर्फ उससे नहीं होती है ईर्ष्या, खास करके अगर जिस व्यक्ति के पास कोई चीज है वह बहुत दर्शाता है वो, और दूसरा उसको देखते हैं और फिर दूसरा उसके कारण उसको ईर्ष्या होती है। व्यक्ति के पास बहुत धन संपत्ति है पर उसने धन संपत्ति अपने बैंक में रखी है, उसका घर बहुत साधारण है, उसे कोई ज्यादा आलिशान में नहीं रहता है, तो फिर ज्यादा लोगों को ईर्ष्या नहीं होगी। जब हमारे जब किसी के पास कोई ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य को जब दर्शाया जाता है तो उस ऐश्वर्य को दर्शाने के कारण लोगों में ईर्ष्या हो जाती है। अगर ऐश्वर्य को दर्शाएगी नहीं तो ईर्ष्या का कारण नहीं रहता है। तो ठीक उसी तरह से यहां पे बताया गया है कि अभी शुजी तो ऐसे इतने विरक्त है कि वो अपना उनका घर भी नहीं है, वो तो कैलाश पर्वत पे पहाड़ के ऊपर एक पेड़ के नीचे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष क्यों करेगा? श्रीमद् भागवतम में तो ये तो सवाल के आधार पर यह लीला आगे बढ़ती है। श्रीमद् भागवतम में जो कथाएं है वह अलग अलग पार्श्व भूमि से आती है, अलग अलग युगों में आती है। Should I wait till the phone was okay? चर्चा कर रहे हैं तो भागवतम में जो भी लीलाएं होती है वो एक तरह से उनका एक ऐसे कल बता रहा था कि इसके एक पास का कारण होता है, एक दूर का कारण होता है। तो भागवत में जो कथा आती है उसका एक पास का कारण ये होता है कि किसी श्रोता ने कोई सवाल पूछा। पर भागवतम ऐसे है कि वो एक स्ट्रक्चर्ड किताब भी है, उसका पूरा एक रचना है और हर एक लीला का भागवतम का अंतिम उद्देश्य जो है उससे संदर्भ है। ये भागवतम का अंतिम उद्देश्य क्या है? भागवतम क्यों बताया गया था? यस, परीक्षित महाराज की जरूरत को पूरी करने के लिए। उनकी जरूरत क्या थी? कैसे भगवान का स्मरण करें। अभी जब मृत्यु पास में ही आ रही है तो फिर मन भगवान में लगाना है। तो मन भगवान में कैसे लगाए? एकाग्रचित्त तस्माद् एकेन मनसा भगवान सात्वताम् पति। भगवान सात्वताम् पति जो उनमें सब जो साधु व्यक्ति है उनके जो सत की और प्रगति करना चाहते सत्य की ओर, वो अपना मन भगवान में कैसे लगाए? उनके लिए ऐसे बताइए सस्मा एक ही न मनसा, एक चित्त से वह भगवान में अपना मन मना लगा सकते हैं। तो वह उद्देश्य अभी हम देखेंगे कि कुछ कुछ लीलाएं जो होती है वो तो स्पष्ट रूप से ऐसी लीलाएं हैं कि भगवान की कथा है। तो भगवान की कथा जब है तो साधारणतः अपने आप मन भगवान में लग जाता है। पूरा दशम स्कंद तो भगवान की लीलाओं से भरा हुआ है, कई और भी ऐसे स्कंद है जिसमें भगवान के अवतारों की लीला है। वहां पे वो अवतारों की लीला जो बताई गई है उसमें भी भगवान की कथा है वो, और तभी भी स्पष्ट होता है कि वो ये भगवान का स्मरण करना है। पर कुछ कुछ ऐसे विभाग है भागवतम में, उनका भगवान से संबंध कैसे है यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो उसके लिए हमें क्या समझना है कि जो चीज बताई जाती है वह कोई ये चीज करो, ये दो पद्धति से बताई जाती है। जैसे विख्यात श्लोक है हरेर नाम एव केवलम। तो अभी ये क्या है, इसमें बताया गया है कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, तीन बार बताया गया है, और केवलम, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। पर साथ साथ उसके क्या बताया, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं है। तो कोई चीज जो कोई चीज पर जोर देना है तो क्या किया जाता है, सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से दोनों पद से बताया जाता है, यह करना चाहिए और यह इसके विपरीत जो है वो नहीं करना चाहिए। तो भागवतम में कुछ कथाएं ऐसी बताई जाती है कि जो हमें दर्शाती है हमें क्या नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए यह बताया जाता है। उसका उद्देश्य होता है कि उन कथाओं से हम सीखें कि ऐसे कार्य करने से क्या परिणाम होता है। तो जो भगवान का स्मरण करने से कैसे व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, इसकी अनेक कहानियां हैं। प्रहलाद महाराज की कहानी है, ध्रुव महाराज की कहानी है, भगवान कृष्ण के अनेक लीलाएं हैं दशम स्कंद में। पर भगवान का स्मरण जो नहीं करता है उस पर क्या प्रभाव हो सकता है, उसके क्या कैसे खतरों में जा सकता है, उसका वर्णन आता है यहाँ पे। तो अभी इसकी एक एक, एक उदाहरण आ सकता है ऐसे कि अजामिल की कहानी। अजामिल जो था वो ऐसे रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति नहीं था, वो ब्राह्मण था, सात्विक जीवन ही रहा, पर सत्वगुण में था, भक्ति में उतना एकाग्रता से नहीं था, तो मन विचित हो गया और फिर पतन हो गया। पर उसके बाद में हरिनाम के एक नाम एक उच्चारण से भी उद्धार हो गया। तो ये कहानी कैसे है कि भगवान का स्मरण न करने से क्या परिणाम हो गया, और फिर पुनः भगवान का स्मरण करने से कैसे उद्धार हो गया। वैसे ही कहानी है भरत महाराज की, भगवान का स्मरण किया उन्होंने और इतना भगवान के स्मरण के आकर्षित हो गए थे कि वो सारा जीवन सारा दुनिया त्याग कर वो एकाग्र हो गए भगवान, पर वहां से पदभ्रष्ट हो गए, एक हिरण की ओर आकर्षित हो गए। फिर उससे वो पदभ्रष्ट होने के बाद क्या हुआ बताया गया, फिर बाकी अगले जन्म में जड़ भरत के रूप में पुनः कैसे वो बड़े सतर्कता से भगवान में स्मरण करके आगे बढ़े। तो इसीलिए ये क्या हो रहा है, परीक्षित महाराज महान भक्त है पर फिर भी उनको उपदेश देने के लिए और हम उनके द्वारा हम सबको उपदेश देने के लिए भागवत में दोनों पद्धति बताया जा रहा है कि ये जो है भगवान का स्मरण करने से कैसे उद्धार होगा, भगवान से अलग किसी चीज का ध्यान लगा देंगे और चौकन्ने रहेंगे तो उससे क्या परिणाम हो जाएगा। तो अभी ये दक्ष की जो लीला है इसमें अगर हम देखेंगे तो भगवान डायरेक्टली नहीं आते हैं, जो लीला है इसमें वास्तव में जो एक तरह से कर्मकांड की लीला है, कर्मकांड के स्तर पे जो दक्ष प्रजापति थे तो वो कैसे अपने अहंकार के कारण उन्हें बड़ी गलती कर दी और उसका क्या परिणाम हो गया ये बताया जा रहा है। पर इसमें ये भी बताया जाता है भूमिका कि कैसे शिवजी ये एक महान भक्त है और शिवजी की महिमा बताई गई है और फिर शिवजी ने कैसे बाद में दक्ष को माफ कर दिया और फिर वही दक्ष बाद में चौथे स्कंद में आते हैं वो छठे स्कंद में वापस आते हैं और फिर उनके दक्ष के आध्यात्मिक प्रगति के लिए काफी समय लग जाता है। पर भागवतम का भाव ये है कि सत्वगुण से शुद्ध सत्व की ओर कैसे जाना है, परीक्षित महाराज सत्वगुण में है जीवन जी रहे, सत्वगुण से शुद्ध सत्व पे जाना है, सत्वगुण के जीवन में भी कैसे खतरे हो सकते हैं यह भागवतम दर्शा रहा है। तो सत्वगुण में एक खतरा हो सकता है कि अपने धार्मिकता पे अहंकार हो सकता है, धार्मिकता पे अहंकार मतलब मैं कितना धर्मशील हूं उसका अहंकार करना। अभी भारत में कई जगह पे लोग हनुमान जी के मंदिर बनाए थे, हनुमान जी बड़े ऐसे बताए कृपालु होते हैं तो उनके पूजा के लिए कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं होते तो कहीं पर उनका मंदिर बना देते, तो कई बार लोग क्या करते हैं हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर बना देते हैं, उनका मंदिर बना देते विग्रह बहुत बड़ा होता है, तो कई लोगों में ये कंपटीशन स्पर्धा हो जाती है मेरा हनुमान का विग्रह ये 10 फीट है मैं उसका 15 फीट बनाऊंगा, तो कोई बोले 25 फीट बनाऊंगा मैं 30 फीट बनाऊंगा, ऐसे ऊंचा बना देते हैं और वो विग्रह ऐसे होता है इतना बड़ा बन जाता है कि वो पहले उनके पास पैसे होते हैं पैसे दिखाने में इतना बड़ा विग्रह बना दूंगा, फिर बाद में लोग बोलते हैं कि सिर्फ दुनिया को दिखाना है विग्रह कितना बड़ा है, तो फिर वो विग्रह के आसपास मंदिर भी नहीं बनाते सारी दुनिया देख सके। तो क्या होता है अभी किसी का ऐसे भाव हो सकता है कि सब लोग हनुमान जी का दर्शन कर सके, पर कुछ लोगों का ऐसे भाव होता है कि मैं इतना बड़ा बनाऊंगा मंदिर। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव होता है, तो गणेश उत्सव में कई लोग होते हैं कि गणेश जी को कितनी बड़ी मूर्ति बनाते हैं, तो वो इतनी बड़ी मूर्ति लाते हैं और फिर मुझसे बोलता है मैं उससे बड़ी मूर्ति लाऊंगा, उससे बड़ी मूर्ति लाऊंगा, और सब बड़ी बड़ी मूर्ति लाते हैं, फिर लोगों को लाते हैं, देखो आओ देखो मैंने कितनी बड़ी मूर्ति लाई। तो एक बार ऐसे ही बड़ा गणेश उत्सव था पुणे में, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था कि वैदिक संस्कृति के बारे में आप कुछ बोलो। तो फिर मैं जब वहाँ पे गया, बहुत सैकड़ों की मात्रा में लोग आए थे, पर वो गणेश जी का पंडाल था, और वहाँ पे गणेश जी के पंडाल में ही बॉलीवुड के सॉन्ग चल रहे थे। तो मैंने उनको पूछा, प्रोफेसर भगत मैंने तो जो संस्थापक थे उनको मैंने पूछा कि अभी ये गणेश जी का उत्सव है तो आप गणेश जी की भजन क्यों नहीं लगा रहे, आपने यहाँ पे ये बॉलीवुड के गीत क्यों लगाए। तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, बोले कि गणेश जी भक्त वत्सल है। वो तो ठीक है, पर उसका क्या ताल्लुक है। बोले वो भक्त वत्सल है, उसका मतलब है कि उनके भक्तों को जो प्रिय है वो उनको भी प्रिय है।
अभी भक्त वत्सल का ये तात्पर्य नहीं है।
अभी यस, जो भगवान है वो सबसे कृपा करते हैं, सबसे स्नेह करते हैं। सो गॉड्स लव इज अनकंडीशनल, बट अनकंडीशनल लव मीन्स वॉट एवर वी डू वी आर लव्ड, नॉट दैट वॉट एवर वी डू इज लव्ड। भगवान का जो स्नेह है वह अटूट है हमारे प्रति, भगवान की जो कृपा है हमारे प्रति अटूट है, पर उनके अटूट प्रेम का अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के वो हम पे प्रेम करते हैं। उसका मतलब क्या है कि हम जो भी करें वो हम पे प्रेम करेंगे, वो हम पे कृपा करेंगे, पर इसका मतलब नहीं कि जो हम जो भी करेंगे उसको वो प्रेम करेंगे, ये दो चीजें अलग है। व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, भगवान उसके हृदय में रहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम करते हैं, यह सत्य है। पर अगर वो पापी है तो उनके पाप को प्रेम नहीं भगवान करते। अजामिल ने अपने परिवार को त्याग दिया, अपने माता पिता को त्याग दिया, अपने अपने पत्नी को त्याग दिया, बड़ा गैर जिम्मेदार जीवन जी रहा था, फिर भी भगवान उस पर कृपा करते। पर जो अजामिल ने पाप पूर्ण कार्य किया उसको प्रेम नहीं करते भगवान। तो भक्त वात्सल्य का मतलब क्या है कि जो भी उनकी थोड़ा सा भक्ति भाव है वो अगर बाद में और कुछ भी गलती क्यों ना हो भगवान पर प्रेम करते। अपिचित सुदराचारो भजते माम अरण्य भाव साधुर एव समन्तव्ये सम्यक व्यवसितो हि सः। नवे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा ही बुरा कार्य क्यों न कर ले, फिर भी मैं उनसे वो उनको अगर वो भक्ति में लग रहे हैं तो उनको महान भक्त मानना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं, उनको महान भक्त मानना चाहिए। उन्हें कह रहे कि उनके दुराचार को सदाचार मानना चाहिए, उनका दुराचार दुराचार ही है। तो इसलिए यह भक्तवात्सल्य का जो अर्थ है यह गलत अर्थ है। पर यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो लोग ऐसे धर्म ये गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं इसलिए कि बड़ी मूर्ति है ताकि और लोग के दर्शन करें, तो सोचते अगर और लोग वहाँ पे आना है तो फिर अगर हम गणेश की कीर्तन रखें ज़्यादा लोग आएंगे नहीं, बॉलीवुड के सामने रखें तो और लोग आएंगे। तो पूरा करने का उद्देश्य क्या हो जाता है, वह कार्य करने का उद्देश्य भगवान की या देवताओं की जो भी है वो पूजा करना, उनका गुणगान करना, उनका स्मरण करना, ये होता ही नहीं है। वो उद्देश्य होता है क्या कि पूरा सिर्फ वो खुद के अहंकार को या खुद के इंद्रियों का तर्पण करना, वही हो जाता है। तो जैसे भारत में भी अभी हम दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली अधिकांश लोगों का क्या होता है, अच्छा स्वादिष्ट अन्न खाना और फटाके बजाना। उसमें कितने लोग दिए लगाते भी है लोग, तो कितने लोग याद करते कि प्रभु रामचंद्र वनवास में गए थे और वनवास से वापस आ गए हैं, वो लीलाओं को भूल जाते हैं। और ये हर एक धर्म में होता है। अमेरिका में जो क्रिसमस होता है, क्रिसमस में अधिकांश लोगों के लिए, बच्चों के लिए, वो जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं है, वो सेंटा क्लॉज के बारे में है कि सेंटा क्लॉज आएगा और मुझे कुछ भेंट देगा, इच्छा पूरी करेगा। तो क्या है, जो भी आध्यात्मिक स्तर पर भी क्यों ना हो वो बहुत आसानी से भौतिक स्तर पर आ जाता है। सकाले ने हमाता योगो नष्ट परंत। आध्यात्मिक चीजें भी लोग भौतिक स्तर पे करके करने लगते हैं और अध्यात्म को भूल जाते हैं। तो ये दक्ष की लीला है, वो उसकी लीला का हम चर्चा और वर्णन अगले प्रवचन में करेंगे, पर उसका उसका पार्श्वभूमि आज हम देखें क्या है। इसका भाव ये है कि दक्ष यज्ञ कर रहा था, पर वो यज्ञ इसलिए कर रहा था कि खुद का मान बढ़ाए, कि मुझे आदर चाहिए, मैं इतना धर्मशील हूं, मैं इतना बड़ा यज्ञ कर रहा हूं। और क्योंकि वह उद्देश्य उसका गलत था, तो सारे जैसे बताया कि जो बड़ी अग्नि होती है उसकी शुरुआत क्या होती है, एक छोटी चिंगारी से होती है। तो अभी इस चिंगारी जो है वो भ्रांत धारणा, गलत संकल्पना होती है। तो ये जो इस दक्ष के मन में जो गलत संकल्पना थी, वह ये नहीं सोचा था कि जो यज्ञ हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य है कि यज्ञेश्वर विष्णु उनकी संतुष्टि करना। वो सोचा था कि यज्ञ इसलिए करना है कि मेरी महिमा मुझे दिखानी सारी दुनिया को, कि देखो मैं इतना पुण्यवान हूं, मैं इतना धनवान हूं, मैं इतना विशाल यज्ञ कर सकता हूं। और फिर इसीलिए जब उसको ऐसा लगा कि शिव जी ने मेरा अनादर किया है, तो फिर वो उसको सहन ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसका उद्देश्य सब करने का यही था कि मेरा मेरी महिमा सबको दिखाऊं मैं। तो वह जो एक भ्रांत धारणा है, उससे अगर व्यक्ति कार्य शुरू करता है तो फिर वो बाद में का कार्य कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर वो भ्रांत धारणा को सुधारता नहीं है, तो गलत संकल्पना को सुधारता नहीं है, तो वो छोटी चीज और एक गलत धारणा बड़ी दूसरी हो जाती है, तीसरी हो जाती है, बढ़ बढ़ के वो और बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जैसे कोई गणित में कोई गणित कर रहा है, पहला कदम अगर गणित में गलत कर दे तो उसके जितने भी हम चीजें करें वो सब गलत हो जाती है। तो दक्ष में जो भ्रांत धारणा थी, जो अहंकार था, वो अहंकार से अंत में वो मुक्त हो जाते हैं और शिवजी को एक महान भक्त समझ के शिवजी की माफी मांगते हैं, शिवजी की आराधना करते हैं, और फिर इस तरह से वो दक्ष भी ये इस तरह मुक्त हो जाते हैं अहंकार से। उसकी वो कैसे होता है आगे उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भी हम सारांश में बोलता हूँ कि सवाल हुआ तो हम देखते हैं। तो आज हम चर्चा की ये दक्ष और शिवजी के इस लीला के बारे में, उसके बारे में सबसे पहले देखा कि कैसे भागवतम यह एक ऐसा एक साधारण प्रवचन के समान नहीं है, वो वास्तव में एक प्रश्नोत्तर का प्रवचन है और उसमें एक व्यक्ता प्रवचन सारे सवाल पूछ रहा है और अलग अलग इतिहास के प्रसंगों में अलग अलग श्रोता सवाल पूछ रहे हैं और सवालों के आधार पर वो भागवतम आगे बढ़ता है। तो कुछ सवाल तत्वज्ञान के बारे में होते हैं और तत्वज्ञान विश्लेषण करते समय कुछ लीला बताई जाती है, जैसे परीक्षित महाराज का प्रायश्चित से कैसे फायदा होता है उसके बारे में सवाल, या कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि वो कुछ प्रसंगों के बारे में होते हैं, लीलाओं के बारे में होते हैं, और वह उसके जो कथाकार होते हैं वो कथा की झलक देते हैं, ऐसी झलक देते हैं जैसे क्लिफहैंगर एंडिंग, कि बड़ी रोचक कोई चीज बता देते हैं फिर सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो रोचक चीज किसके आधार पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि दो बड़ी अलग चीजें बताइए, जो व्यक्ति बड़े शीलवताम है, जो जिनमें कोई गर्व नहीं है, उनके प्रति अहंकार कोई क्यों कर रहा है। शिव जी बहुत शीलवताम श्रेष्ठ है, उनके प्रति दक्ष ने ईर्ष्या क्यों की। और जो पिता होते हैं अपने कन्या के समान के प्रति जो बहुत हमेशा स्नेह करते हैं, तो फिर वह उसके प्रति इतना अनादर क्यों किया कि उसके कन्या ने देह त्याग दिया। तो ये दो सवाल हैं, उसके जवाब अभी आगे इस कथा में दिया जाएगा। भागवतम में जो सब कथाएं है, जब श्लोक है, उनका उद्देश्य है कि भगवान में हम मन लगा पाए। तो वह दो पद्धति से किया जाता है कि भगवान में मन लगाने की महिमा क्या है, उससे कैसे हमारा उद्धार होता है, और दूसरा है कि भगवान में मन न लगाए और किसी और चीज में मन लगाए तो उससे कैसे हमारे ग्लानी कैसे पतन हो सकता है। तो अजामिल काम वासना मन लग जाता है, जब भरत महाराज का एक हिरण में मन लग जाता है, यहाँ पे दक्ष का मन जो है अपने अहंकार में लग जाता है। तो भागवत में सत्वगुण से शुद्ध सत्व पर कैसे पहुंचाना है उसके बारे में अधिकांश रूप से वर्णन आता है। तो दक्ष सत्वगुण में है, सत्वगुण में भी ऐसे नहीं है कि सब लोग बहुत पुण्यवान और अच्छे हो गए, सत्वगुण में तो है वो जीवन जी रहे, पर कभी कभी सत्वगुण या अहंकार होता है। वो क्या है, मैं कितना धर्मशील हूं उसका लोग प्रदर्शन करते हैं। तो आधुनिक समाज में कोई हनुमान जी के या गणेश जी की मूर्ति बना के उसकी पूजा करता है वो अहंकार कारण हो सकता है। तो फिर भगवान का भक्तवात्सल्य मतलब क्या है कि हम जो भी करते हैं फिर भी भगवान हमें हम पे कृपा करते हैं, ऐसे नहीं कि हम जो भी करते हैं उसको भगवान प्रेम करते हैं। सही और गलत कार्य जरूर है, ये तो इस कथा में बताया गया है कि दक्ष की जो जो गलत धारणा थी कि धर्म अपने मान सम्मान के लिए कर रहे थे, वो भ्रांत धारणा जो थी वो एक चिंगारी थी। जैसे एक छोटी चिंगारी से बड़ी दावाग्नि आ सकती है, उस तरह से उस एक भ्रांत धारणा के कारण एक बड़ा संघर्ष और संग्राम हो जाता है। तो वो कैसे होता है और उससे आगे क्या शिक्षाएं हम ले सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। किसी को सवाल है?
Sometimes we cannot detect for what reason it is coming and how we understand it and how we should work on it. It happens, you know, the envy comes and we react and all, but why it happened, you know, we don't understand internally. So how do we do these things?
Okay. तो कभी कभी कोई व्यक्ति भक्तों के समूह में कोई हमसे ईर्ष्या करने लगता है, तो भी वो क्यों ईर्ष्या कर रहा है हमें समझ में नहीं आता है, तो फिर तभी हम क्या करें? हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आती है, अच्छा,
when it comes and then you know how we react because of that,
अच्छा,
we don't understand, and then how to work on it also, we have to reflect and how, so how do we work on it?
तो अगर हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आ जाती है और हमें पता नहीं आ रही ईर्ष्या क्यों आ रही है, तो फिर उस समय हमें क्या करें? तो उसके का उस ईर्ष्या में हम कुछ बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, वो अच्छा नहीं होता है, तो उसको भी कैसे टाले हम? क्या है कि साधारणतया इस भौतिक जगत का ये स्वभाव है कि नो इंटरैक्शन मींस नेगेटिव परसेप्शन, कि अगर हम किसी से कोई आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं तो फिर ऐसे नहीं है कि वो व्यक्ति अपनी दुनिया में, मैं मेरी दुनिया में हूं, तुम रहो मैं रहो। क्या होता है अगर हम ऐसे सानिध्य में रह रहे हैं तो व्यक्ति उसे बात क्यों नहीं करता है, व्यक्ति ऐसे क्यों है अकेले में रहता है, तो उसे साधारणतः नकारात्मक विचार आते हैं। तो संबंध जो होते हैं वह एक वृक्ष के समान होते हैं, पहले उनको बहुत पानी देना पड़ता है, बाद में जैसे वृक्ष बड़े होते हैं उनको इतना पानी देने की जरूरत नहीं है, हम खुद भी पुष्टि कर लेते हैं। पर हमारे संबंध ऐसे होते हैं कि अगर हम संबंधों में जो छेद आदान प्रदान है, ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पूछेन भूंते भोजयते शैव शब्दम प्रीति लक्षण, अगर इस तरह से हम आदान प्रदान सकारात्मक रूप से नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है वो जो संबंध है कई बार नकारात्मक दिशा में चले जाते हैं। ये जरूरी नहीं है पर ये काल का स्वभाव होता है। जैसे किसी वृक्ष का कोई भी बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा, कुछ कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि वो अपने आप चले बड़े होंगे, पर कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि उनको हमेशा उनका थोड़ा देखभाल करना पड़ता है। तो कुछ कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि हम उस वक्त को साल में एक बार भी मिलते हैं, पर जब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा आदान प्रदान होता है। पर तो उस समय क्या होता है कि कोई आदान प्रदान है नहीं, पर कोई गलत भ्रांत कोई गलत धारणा होने की भी कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारे बारे में कोई उनको कोई बता नहीं रहा है, तीसरा कोई व्यक्ति बता नहीं रहा है। पर जब हम किसी के साथ रह रहे हैं पास में ही है, हम उनसे अगर बात ज्यादा नहीं करते हैं तो दूसरे हमारे बारे में उनसे बात करते हैं या वो हमारे बारे में दूसरों से बात करते हैं, और फिर वो दूसरे हमारे बारे में क्या बताने वाले हैं किसी को कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर हमारे मन अगर हम देखते हैं कि हमारे मन में किसी के प्रति गलत विचार आ रहे हैं, विचार का भाव आ रहा है, तो साधारणतः हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्यों हो रहा है, तो कई बार मन में विचार कहाँ से आते हैं यह समझना बड़ा मुश्किल होता है। अभी कभी कभी हम घर साफ कर रहे हैं तो घर में कुछ कचरा आ गया, तो अभी कचरा कहाँ से आया है वो पता करेगा, ये खिड़की से आया, ये दरवाजे से आया, कोई अपने जूते पहन के आ गया, उसके कारण आ गया। अगर बार बार वो कचरा वहां पे आ रहा है तो हम ढूंढने गए कहाँ से आ रहा है, पर हर कचरा जब आता है तो वो कहाँ से आ रहा है वो ढूंढने में समय नहीं डालते, कचरे को पहले बाहर निकालते। तो उसी तरह से जो मन में विचार आते हैं, कहाँ से विचार आते हैं उसका अगर हम ढूंढने लगे तो वो पता करना बड़ा काफी मुश्किल हो जाता है। तो क्या है, उसको ठीक है विचार आ गया, अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा और चला जाएगा वो। पर अगर बार बार अगर कोई विचार आ रहा है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके बारे में। और साधारणतः नकारात्मक विचारों को हम निकाल नहीं सकते। जैसे अगर हम हमारा कोई कंप्यूटर हो, फोन हो, उस पर अगर कोई फाइल ऐसे डाउनलोड कर दिया और वो खराब फाइल है, कोई वायरस है या ऐसी फाइल हमको नहीं चाहिए, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। पर हमारे मन में जो विचार है, मन में कोई डिलीट बटन नहीं होता है। अच्छा ये विचार होने चाहिए, उसको भूल जाओ, भुला नहीं सकते उस किसी को चीज़ को। पर क्या कर सकते हैं हम, जो मन में दूसरे चीज़ों के बारे में विचार करेंगे तो ये विचार धीरे धीरे मन से चला जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या आ रही है तो हम कॉन्शियसली ध्यानपूर्वक हम उनके बारे में सकारात्मक विचार कर सकते हैं, हमारे मन ही मन उनके बारे में उनका कुछ गुणगान कर सकते हैं, या फिर दूसरों को उनके बारे में कुछ अच्छा बता सकते हैं। भले ही हमारे मन में उनके बारे में थोड़ा द्वेष भावना आ रही है, पर विचार करके कि उनके बारे में क्या अच्छे गुण हैं, और दिखावे के लिए नहीं, सही में ऐसे इच्छा के साथ कि मैं उसके बारे में मैं उनके बारे में अच्छा सोचना चाहता हूँ, अच्छा बोलना चाहता हूँ, और उस वजह से उनका थोड़ा उनके बारे में सकारात्मक बोल सकते हैं। या जो ऐसे भक्त है जो उनकी सराहना करते हैं, उनसे बातचीत करके मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भक्त ऐसा है, ऐसा ऐसा है, पर ये भक्त उनसे इतना उनका इतना आदर करते, इतना स्नेह करते, तो ये इनमें क्या देख रहे हैं, तो उनसे थोड़ा बातचीत करें। कभी कभी क्या हो जाता है, हम हमारे संबंध में, इंग्लिश में एक शब्द है इको चैम्बर। इको चैम्बर मतलब क्या, कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और मेरे आजू बाजू में एक ऐसा ग्लास कांच के ऐसे दीवार है, तो मेरी ध्वनि बाहर जाती ही नहीं है, सिर्फ मेरी ध्वनि मेरे पास आती है वापस। तो फिर दूसरा कुछ बोल रहा है तो वो मुझे, वो कांच की दीवार है उसके अंदर सुनाई नहीं देता है, सिर्फ मैं जो बोलता हूँ वही सुनाई देता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम हमारे खुद के इको चैम्बर में जीने लगते हैं। मतलब क्या है कि मेरी एक धारणा होती है और फिर मैं उन्हीं भक्तों का संग करता हूँ जो मेरी धारणा की पुष्टि करते हैं। फिर मैं सोचता हूँ ये भक्त बहुत बुरा है, और फिर दूसरा एक भक्त है वो भी कहता है वो भक्त बहुत बहुत बुरा है, और हम दोनों हाँ देखो ये भक्त इतना बुरा है, इसने मेरे साथ ऐसे किया वैसे किया। और फिर क्या होता है, वो भक्त में कुछ अच्छाई भी हो सकती है उसके कारण हम देखते ही नहीं, तो उससे हम कभी इको चैम्बर में रहते हैं। तो उसी कारण हमें उस इको चैम्बर से बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर अभी ऐसे जरूर हो सकता है कुछ भक्तों में कुछ गलती भी हो सकती है, और फिर अगर वो बहुत गंभीर चीज़ है तो उसके बारे में कुछ मैं करना पड़ेगा। पर जैसे अगर आप बता रहे हैं कि हमें पता नहीं चल रहा है, तो फिर ये तीन चीज़ें कर सकते हैं, उनके बारे में सकारात्मक चीज़ गुण देख सकते हैं, उनके उनका गुणगान दूसरों से कर सकते हैं, और जो उनकी सराहना करते हैं उनका संग करके फिर उनके सद्गुण उनके बारे में हम और जानकारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंद।